7 अक्टूबर क्या इसराइल ने इसे होने दिया? 7 अक्टूबर 2023 को हमास का हमला इसराइल के इतिहास में सबसे विनाशकारी खुफिया और सुरक्षा विफलताओं में से एक के रूप में दर्ज है। यह सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से भी था। न केवल हमले के सामरिक विवरण पहले से ही काफी हद तक ज्ञात थे, बल्कि इजरायली संस्थानों को बार बार चेतावनी दी गई थी उनके अपने अधिकारियों, अग्रिम पंक्ति के पर्यवेक्षकों और विदेशी सहयोगियों द्वारा, फिर भी कोई निर्णायक निवारक उपाय नहीं किए गए। यह एक परेशान करने वाला सवाल उठाता है, क्या यह आपदा केवल लापरवाही और घमंड का परिणाम थी या इसे किसी स्तर पर जानबूझकर होने दिया गया? पूर्व खुफिया जानकारी और अनदेखी की गई चेतावनियां। 7 अक्टूबर से बहुत पहले इजरायली खुफिया सेवा के पास हमास का लगभग 40 पृष्ठों का एक ब्लूप्रिंट था, जिसका कोडनेम जेरिको वॉल योजना था, जिसमें अंतिम हमले का चरणबद्ध विवरण दिया गया था। ड्रोन हमले, पैराग्लाइडर, सीमा बार को तोड़ना, सैन्य ठिकानों पर हमले और पास के नागरिक क्षेत्रों में नरसंहार। यह योजना एक साल से अधिक पहले प्राप्त की गई थी और इसे वरिष्ठ सैन्य और खुफिया अधिकारियों के बीच व्यापक रूप से प्रसारित किया गया था। फिर भी इसे आकांक्षी मानकर खारिज कर दिया गया, जो हमास की क्षमताओं से परे था। अकेले 2023 में दी गई चेतावनियों का रिकॉर्ड दुखद है। सिग्नल खुफिया सैनिकों ने इस योजना के अनुरूप तैयारियों को चिन्हित किया। यूनिट 8200 में एक सार्जेंट ने सितंबर 2023 में अपने वरिष्ठों को चेतावनी दी कि यह योजना आसन्न थी, इसे शोफर की चेतावनी से तुलना करते हुए। सीमा पर तैनात कई युवा महिलाएं निगरानी चौकियों पर बार बार हमास के अभ्यास, ड्रोन और रिहर्सल की रिपोर्ट प्रस्तुत करती थीं, जो जेरिको वॉल योजना से मेल खाती थीं। उन्हें खारिज कर दिया गया, कुछ को तो उनकी लगन के लिए सजा की धमकी भी दी गई। 6 अक्टूबर को खुफिया जानकारी ने हमास के दर्जनों कार्यकर्ताओं द्वारा इसराइली सिम कार्ड सक्रिय करने का पता लगाया, जो आसन्न घुसपैठ का स्पष्ट संकेत था। हमले से कुछ घंटे पहले आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हलेवी ने स्वयं एक कॉन्फ्रेंस कॉल में इन रिपोर्टर्स को सुना, लेकिन उन्हें रूटीन अभ्यास के रूप में माना। ये सभी संकेत संरेखित थे, प्रत्येक को कम महत्व दिया गया और किसी ने भी बढ़ी हुई तत्परता को जन्म नहीं दिया। सहयोगियों की चेतावनियां। इसराइल एकमात्र पक्ष नहीं था जो आसन्न खतरे से अवगत था। मिस्र की खुफिया सेवा ने बार बार अपने इसराइली समकक्षों को चेतावनी दी कि कुछ बड़ा होने वाला है। सितंबर 2023 के अंत में जनरल अब्बास कमेल ने व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री नेतन्याहू को बताया कि हमास एक भयानक ऑपरेशन की योजना बना रहा था। इस बीच संयुक्त राज्य अमेरिका ने कुछ दिनों पहले हमास हिंसा के बढ़ते जोखिम को चिन्हित किया, हालांकि वॉशिंगटन ने बाद में पुष्टि की कि उसने जेरिको वॉल योजना को कभी नहीं देखा। इसके बावजूद इसराइल ने कोई विशेष तैयारी नहीं की और नेतन्याहू ने बाद में इनकार किया कि उन्हें ऐसी कोई चेतावनी मिली थी। नोवा फेस्टिवल की कमजोरी। इस त्रासदी का सबसे भयावह पहलू नोवा म्यूजिक फेस्टिवल नरसंहार है, जिसमें 360 से अधिक युवा मारे गए। फेस्टिवल को 7 अक्टूबर तक बढ़ाने की मंजूरी आईडीएफ ने केवल 2 दिन पहले दी थी, फिर भी न तो कोई ऑन साइट संपर्क प्रदान किया गया और न ही बढ़ी हुई रक्षा व्यवस्था की गई, भले ही आयोजन स्थल गाजा सीमा से थोड़ी दूरी पर था। हमले से कुछ घंटे पहले आईडीएफ और शिनबेट के अधिकारियों ने निजी तौर पर फेस्टिवल के लिए खतरे की संभावना पर चर्चा की, लेकिन उन्होंने आयोजकों को चेतावनी नहीं दी और न ही स्थल को खाली कराया। जब हमला शुरू हुआ, इजरायली वायु सेना वर्षों में अपनी सबसे कम तत्परता पर थी, जिसमें पूरे देश में केवल 2 लड़ाकू जेट और 2 हेलीकॉप्टर तत्काल अलर्ट पर थे। फेस्टिवल क्षेत्र में सुदृढ़ीकरण हत्याओं के शुरू होने के लगभग 5 घंटे बाद तक नहीं पहुंचा। विलंबित प्रतिक्रिया और कमान में अराजकता। विफलता खुफिया जानकारी तक सीमित नहीं थी। 7 अक्टूबर की सुबह हमास ने एक समन्वित हमले में कैमरे, रेडियो और सेंसर को नष्ट कर दिया, जिससे इजरायली बल अंधे हो गए। हमले शुरू होने के 1 घंटे से अधिक समय बाद पहला जुटाव आदेश जारी किया गया। तब तक हमास के लड़ाके पहले ही सीमा पर 77 बिंदुओं को भेज चुके थे। बेहरी किबुत्स में आईडीएफ को जवाब देने में घंटों लग गए और 100 से अधिक निवासी मारे गए। नीर ओज में पहली टुकड़ियां हमलावरों के जाने के बाद ही पहुंची। नोवा फेस्टिवल में कमांडरों ने गलती से माना कि स्थल खाली कर दिया गया था, जबकि सैकड़ों उत्सव ई अभी भी गोलीबारी के अधीन थे। संरचनात्मक और रणनीतिक अंधापन। विश्लेषक अक्सर इन विफलताओं को कॉन्सेप्सिया अवधारणा के तहत वर्गीकृत करते हैं, यह धारणा कि हमास डर गया था, शासन पर केंद्रित था और पूर्ण पैमाने पर युद्ध में रुचि नहीं रखता था। यह दृष्टिकोण गाजा के स्मार्ट बाड़ और अन्य तकनीकी बाधाओं में अत्यधिक आत्मविश्वास द्वारा प्रबलित इसराइल को अपर्याप्त रूप से रक्षित छोड़ गया। हमले से दो दिन पहले आईडीएफ कमांडो कंपनियों को गाजा से वेस्ट बैंक में बसने वालों की रक्षा के लिए स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे गाजा सीमा पर केवल मुट्ठी भर बटालियन बचे। 2021 से गाजा में निगरानी इकाइयां पहले से ही कम कवरेज के साथ चल रही थीं, रात और सप्ताहांत की निगरानी को कम कर दिया गया था। समय, सिमचट तुरा, एक धार्मिक अवकाश ने कमजोरी को और बढ़ा दिया। परिणाम, जांच, इस्तीफे और मसौदा रिपोर्ट। 7 अक्टूबर के बाद से कई आंतरिक जांचों ने विफलताओं को सूचीबद्ध किया है। आईडीएफ की 2025 की जांच ने घटनाओं को नागरिकों की रक्षा में पूर्ण विफलता करार दिया। सैन्य खुफिया प्रमुख मेजर जनरल लहरोन हलीवा ने अप्रैल 2024 में इस्तीफा दे दिया, अपनी शाखा की गलतियों की जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए। शिनबीट की अपनी समीक्षा 2025 ने गंभीर चूक को सूचीबद्ध किया और राजनीतिक घर्षण को जन्म दिया। राज्य नियंत्रक ने नोवा फेस्टिवल के संबंध में पुलिस और सैन्य कमांडरों की कड़ी आलोचना करने वाली मसौदा निष्कर्ष जारी किए हैं। फिर भी इनमें से कोई भी रिपोर्ट इरादे को नहीं बताती। वे गलत धारणा, गलत निर्णय और पक्षाघात का वर्णन करती हैं, लेकिन साजिश का नहीं। कोई बोनो? गाजा का भविष्य? फिर भी संदेह बना हुआ है। 7 अक्टूबर के बाद के महीनों में इजरायली नीति निर्णायक रूप से गाजावासियों के बड़े पैमाने पर विस्थापन की ओर बढ़ी है, जिसमें स्वैच्छिक प्रवास और पुनर्वास की खुली बातचीत हो रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो गाजा को प्रमुख रियल एस्टेट विकास, लग्जरी परियोजनाओं और तकनीक, एयर स्टार्टअप्स और विनिर्माण के केंद्र में बदलने का विचार भी प्रस्तुत किया है। ऐसी दृष्टियां जो बिना अधिकांश फिलिस्तीनी आबादी को हटाए असंभव हैं। यह इस तर्क को बल देता है कि हमला, हालांकि खूनी और वास्तविक, इसराइल और उसके सहयोगियों के लिए राजनीतिक व रणनीतिक उद्देश्यों को पूरा करता था। निष्कर्ष, 7 अक्टूबर के आसपास के सबूत एक तरह से जबरदस्त हैं। इसराइल के पास खुफिया जानकारी, चेतावनियां और यहां तक कि वास्तविक समय के संकेतक थी कि क्या होने वाला है। कार्रवाई करने में विफलता को एकल चूक के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि यह निर्णयों की एक श्रृंखला का परिणाम था। प्रत्येक ने खतरों को टाला, कम महत्व दिया या अनदेखा किया, जो पीछे मुड़कर देखने पर स्पष्ट थे। क्या यह जानबूझकर अनुमति देने के बराबर है, यह एक अलग मामला है। कोई निर्णायक दस्तावेज या स्वीकारोक्ति सामने नहीं आई है जो इरादे को साबित करती हो। जो मौजूद है वह परिस्थितिजन्य सबूत है, लेकिन इतनी मात्रा में और इतनी अजीब प्रकृति का कि कई लोगों को केवल अक्षमता को पूरी कहानी के रूप में स्वीकार करना मुश्किल लगता है। कम से कम 7 अक्टूबर केवल आश्चर्य की त्रासदी नहीं थी। यह एक ऐसी विफलता थी जिसकी भविष्यवाणी की गई थी, जिसका अभ्यास किया गया था और जिसके खिलाफ चेतावनी दी गई थी, फिर भी अस्पष्ट रूप से होने की अनुमति दी गई थी। और इसके बाद विनाश का उपयोग गाजा के खिलाफ व्यापक कार्रवाइयों को सही ठहराने के लिए किया गया है, जो क्षेत्र को फिलिस्तीनियों के बिना लाभकारी रियल एस्टेट और उच्च तकनीक उद्योग में बदलने की लंबे समय से चली आ रही महत्वाकांक्षाओं के साथ परेशान करने वाली तरह से संरेखित हैं। इस प्रकार हालांकि निर्णायक सबूत की कमी है, परिस्थितिजन्य रिकॉर्ड दृढ़ता से सुझाव देता है कि 7 अक्टूबर यदि इंजीनियर नहीं किया गया तो कम से कम होने की अनुमति दी गई थी। संदर्भ, न्यूयॉर्क टाइम्स, दिसंबर 2023। इसराइल को हमास के हमले की योजना एक साल से अधिक पहले से पता थी। हारेट्स 2023-2025। यूनिट 8200 की चेतावनियों, सीमा निगरानी सैनिकों की गवाही और आईडीएफ की आंतरिक जांचों पर विभिन्न खोजी रिपोर्ट। खान 11 न्यूज 2024। 7 अक्टूबर को याफ की अप्रस्तुति। द गार्जियन अक्टूबर 2023। मिस्र ने हमास के हमले से कुछ दिन पहले इसराइल को चेतावनी दी थी, अमेरिकी सांसद का कहना है। एसोसिएटेड प्रेस अक्टूबर 2023। मिस्र की खुफिया सेवा ने बार बार इसराइल को हमास की योजनाओं के बारे में चेतावनी दी। टाइम्स ऑफ इसराइल 2023-2025। आईडीएफ जांच, नोवा फेस्टिवल स्वीकृतियों और राज्य नियंत्रक मसौदों की कवरेज। वॉशिंगटन पोस्ट 2023-2024। 7 अक्टूबर की घटनाओं का पुनर्निर्माण, जिसमें स्पष्ट दृष्टि में हमास के अभ्यास और इसराइली प्रतिक्रियाएं शामिल हैं। वाइनेट न्यूज 2024-2025। दे एरी और नीर ओज में आईडीएफ की देरी से प्रतिक्रियाओं पर रिपोर्ट। आईडीएफ प्रवक्ता इकाई फरवरी 2025। 7 अक्टूबर जांच आयोग के निष्कर्षों का सारांश। शिनबीट आंतरिक समीक्षा मार्च 2025। खुफिया विफलताओं और नीति अंतरालों पर निष्कर्ष। सीएनएन 2023-2024। अंतर्राष्ट्रीय खुफिया चेतावनियों और जेरिको वॉल पर अमेरिकी बयानों की कवरेज। अल जजीरा 2023-2025 गाजा विस्थापन नीतियों और स्वैच्छिक प्रवास पर बहस की रिपोर्ट। डोनाल्ड जे ट्रंप अभियान बयान 2024 गाजा को लग्जरी रियल एस्टेट और तकनीक विनिर्माण केंद्रों में पुनर्विकास के प्रस्तावों पर टिप्पणियां।